लुका की मार्फत इंजील बाब 2। उन अय्याम में रूम के शहंशाह ऑगस्तुस ने फरमान जारी किया कि पूरी सल्तनत की मर्दमशुमारी की जाए। ये पहली मर्दमशुमारी उस वक्त हुई जब कुरेनियस शाम का गवर्नर था। हर किसी को अपने वतनी शहर में जाना पड़ा ताकि वहां रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाए। चुनांचे यूसुफ गलील के शहर नासरत से रवाना होकर यहूदिया के शहर बैतलहम पहुंचा। वजह यह थी कि वो दाऊद बादशाह के घराने और नस्ल से था और बैतलहम दाऊद का शहर था। चुनांचे वो अपने नाम को रजिस्टर में दर्ज करवाने के लिए वहां गया। उसकी मंगेतर मरियम भी साथ थी। उस वक्त वो उम्मीद से थी। जब वो वहां ठहरे हुए थे तो बच्चे को जन्म देने का वक्त आ पहुंचा। बेटा पैदा हुआ। ये मरियम का पहला बच्चा था। उसने उसे कपड़ों में लपेटकर एक चरनी में लिटा दिया क्योंकि उन्हें सराय में रहने की जगह नहीं मिली। उस रात कुछ चरवाहे करीब के खुले मैदान में अपने रेवड़ों की पहरेदारी कर रहे थे। अचानक रब का एक फरिश्ता उन पर जाहिर हुआ और उनके इर्द गिर्द रब का जलाल चमका। यह देखकर वो सख्त डर गए, लेकिन फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुमको बड़ी खुशी की खबर देता हूँ जो तमाम लोगों के लिए होगी। आज ही दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए निजात दहिंदा पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और तुम उसे इस निशान से पहचान लोगे। तुम एक शीरखार बच्चे को कपड़ों में लिपटा हुआ पाओगे, वो चरनी में पड़ा हुआ होगा। अचानक आसमानी लश्करों के बेशुमार फरिश्ते उस फरिश्ते के साथ जाहिर हुए जो अल्लाह की हम्द सना करके कह रहे थे, आसमान की बुलंदियों पर अल्लाह की इज्जत व जलाल, जमीन पर उन लोगों की सलामती जो उसे मंजूर हैं। फरिश्ते उन्हें छोड़कर आसमान पर वापस चले गए तो चरवाहे आपस में कहने लगे, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात देखें जो हुई है और जो रब ने हम पर जाहिर की है। वो भागकर बैतलहम पहुंचे। वहां उन्हें मरियम और यूसुफ मिले और साथ ही छोटा बच्चा जो चरनी में पड़ा हुआ था। ये देखकर उन्होंने सब कुछ बयान किया जो उन्हें इस बच्चे के बारे में बताया गया था। जिसने भी उनकी बात सुनी वह हैरत ज़दा हुआ, लेकिन मरियम को ये तमाम बातें याद रहीं और वो अपने दिल में उन पर गौर करती रही। फिर चरवाहे लौट गए और चलते चलते उन तमाम बातों के लिए अल्लाह की ताजीम व तारीफ करते रहे जो उन्होंने सुनी और देखी थी, क्योंकि सब कुछ वैसा ही पाया था जैसा फरिश्ते ने उन्हें बताया था। 8 दिन के बाद बच्चे का खतना करवाने का वक्त आ गया। उसका नाम ईसा रखा गया, यानी वही नाम जो फरिश्ते ने मरियम को उसके हामिला होने से पहले बताया था। जब मूसा की शरीयत के मुताबिक तहारत के दिन पूरे हुए तब वो बच्चे को यरूशलेम ले गए ताकि उसे रब के हुजूर पेश किया जाए। जैसे रब की शरीयत में लिखा है, हर पहलौठे को रब के लिए मखसूस वो मुकद्दस करना है। साथ ही उन्होंने मरियम की तहारत की रस्म के लिए वो कुर्बानी पेश की जो रब की शरीयत बयान करती है, यानी कुमरिया या 2 जवान कबूतर। उस वक्त यरूशलेम में एक आदमी बनाम शमौन रहता था। वो रास्तबाज और खुदा तरस था और इस इंतजार में था कि मसीह आकर इसराइल को सुकून बख्शे। रूहुल कुदुस उस पर था और उसने उस पर ये बात जाहिर की थी कि वो जीते जी रब के मसीह को देखेगा। उस दिन रूहुल कुदुस ने उसे तहरीक दी कि वो बैतुल मुकद्दस में जाए। चुनांचे जब मरियम और यूसुफ बच्चे को रब की शरीयत के मुताबिक पेश करने के लिए बैतुल मुकद्दस में आए तो शमौन मौजूद था। उसने बच्चे को अपने बाजुओं में लेकर अल्लाह की हम्द सना करते हुए कहा, ऐ आका, अब तू अपने बंदे को इजाजत देता है कि वो सलामती से रहलत कर जाए जिस तरह तूने फरमाया है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से तेरी उस निजात का मुशाहिदा कर लिया है जो तूने तमाम कौमों की मौजूदगी में तैयार की है। यह एक ऐसी रोशनी है जिससे गैर यहूदियों की आंखें खुल जाएंगी और तेरी कौम इसराइल को जलाल हासिल होगा। बच्चे के माँ बाप अपने बेटे के बारे में इन अल्फाज पर हैरान हुए। शमौन ने उन्हें बरकत दी और मरियम से कहा, ये बच्चा मुकर्रर हुआ है कि इसराइल के बहुत से लोग इससे ठोकर खाकर गिर जाएं, लेकिन बहुत से इससे अपने पांव पर खड़े भी हो जाएंगे। गो ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है, तो भी इसकी मुखालफत की जाएगी। यूं बहुतों के दिली ख्यालात जाहिर हो जाएंगे। इस सिलसिले में तलवार तेरी जान में से भी गुजर जाएगी। वहां बैतुल मकद्दस में एक उम्र रसीदा नबिया भी थी जिसका नाम हना था। वो फनुएल की बेटी और आशर के कबीले से थी। शादी के 7 साल बाद उसका शौहर मर गया था। अब वो बेवा की हैसियत से 84 साल की हो चुकी थी। वो कभी बैतुल मकद्दस को नहीं छोड़ती थी, बल्कि दिन रात अल्लाह को सजदा करती, रोजा रखती और दुआ करती थी। उस वक्त वो मरियम और यूसुफ के पास आकर अल्लाह की तमजीद करने लगी। साथ साथ वो हर एक को जो इस इंतजार में था कि अल्लाह फिदिया देकर यरूशलेम को छुड़ाए, बच्चे के बारे में बताती रही। जब ईसा के वालिदैन ने रब की शरीयत में दर्ज तमाम फराइज अदा कर लिए, तो वो गलील में अपने शहर नासरत को लौट गए। वहां बच्चा परवान चढ़ा और तकवियत पाता गया। वो हिकमत वो दानाई से मामूर था और अल्लाह का फजल उस पर था। ईसा के वालिदैन हर साल फसह की ईद के लिए यरूशलेम जाया करते थे। उस साल भी वो मामूल के मुताबिक ईद के लिए गए। जब ईसा 12 साल का था, ईद के अख्तिताम पर वो नासरत वापस जाने लगे, लेकिन ईसा यरूशलेम में रह गया। पहले उसके वालिदैन को मालूम न था, क्योंकि वो समझते थे कि वो काफिले में कहीं मौजूद है। लेकिन चलते चलते पहला दिन गुजर गया और वो अब तक नजर न आया था। इस पर वालिदैन उसे अपने रिश्तेदारों और अजीजों में ढूंढने लगे। जब वो वहां न मिला तो मरियम और यूसुफ यरूशलेम वापस गए और वहां ढूंढने लगे। 3 दिन के बाद वो आखिरकार बैतुल मकद्दस में पहुंचे। वहां ईसा दीनी उस्तादों के दरमियान बैठा उनकी बातें सुन रहा और उनसे सवालात पूछ रहा था। जिसने भी उसकी बातें सुनी वो उसकी समझ और जवाबों से दंग रह गए। उसे देखकर उसके वालिदैन घबरा गए। उसकी मां ने कहा, बेटा तूने हमारे साथ ये क्यों किया? तेरा बाप और मैं तुझे ढूंढते ढूंढते शदीद कोफ्त का शिकार हुए। ईसा ने जवाब दिया, आपको मुझे तलाश करने की क्या जरूरत थी? क्या आपको मालूम न था कि मुझे अपने बाप के घर में होना जरूर है? लेकिन वो उसकी बात न समझे। फिर वो उनके साथ रवाना होकर नासरत वापस आया और उनके ताबे रहा। लेकिन उसकी मां ने ये तमाम बातें अपने दिल में महफूज रखी। यूं ईसा जवान हुआ, उसकी समझ और हिकमत बढ़ती गई और उसे अल्लाह और इंसान की मकबूलियत हासिल थी।